का था, रूह वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं जयनंदन की लिखी कहानी कीड़े फतिंगे। इलाके के इकलौते अस्पताल का इकलौता डॉक्टर कौतुक मरीज देखने वाले हॉल में अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके आगे की मेज के पार वाली कुर्सियों पर उसके तीन लंगोटिया दोस्त बैठकर गपियाए जा रहे थे। जाहिर है तीनों धन धान्य और रौब दाब के मामले में असाधारण लोग थे, इसलिए डॉक्टर के मुंह लगे थे। समय मरीज देखने का था, सो हॉल के बाहर कई कराहते बिसूरते हाल बेहाल लोग इंतजार में बैठे थे, पर डॉक्टर एंड पार्टी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। परवाह करने वाला था भी तो वह इस अस्पताल का मेहतर छोटन था, जो अपनी सीमा में बहुत तुच्छ था, अतः इलाज संबंधी कोई उपक्रम इसके अधीन नहीं था। यारों की गपबाजी इस वक्त छोटन पर ही केंद्रित थी। कुछ देर पहले उसने इन्हें टोक देने की हिमाकत की, बात तनिक बढ़कर हुज्जत में बदल। उसका पड़ोसी बेंगा मांझी कई दिनों से बद से बदतर हालात में घिरता जा रहा था। उसके उल्टी दस्त बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उचित ध्यान के अभाव में सही दवा नहीं दिए जाने के कारण कई कष्ट उस पर आ टूटे थे। छाती में तेज दर्द के साथ साथ बुखार भी शुरू हो गया था। आज उसका तड़पना बिलखना चरम पर पहुंच गया था। हालत देखी ना गई तो छोटन बेजब्त हो उठा। आप कैसा डॉक्टर है, दो की तड़प कर कराह कर मर रहा है और आप यहां मजलिस जमा रहे हैं? डॉक्टर कौतुक इस दुस्साहस पर एकदम उफन पड़ा। लग तो ऐसा रहा है कि तुम ही मर जाओगे इसके बदले में। अगर वह तुम्हारा बाप लगता है तो उसे तुम शहर क्यों नहीं ले जाते? जाओ, ले जाओ यहां से, अब हमसे कंट्रोल नहीं होगा। बेहुदा अनपढ़ जाहिल मुझ पर हुक्म चला रहा है, अपनी औकात भूल गया है? छोटन के लिए उसकी ऐसी गैर जिम्मेदाराना और अमानवीय हरकत आए दिन की बात थी। उसने धिक्कारते हुए फिर पूछा, यही जवाब देना था तो क्या पहले फुर्सत नहीं निकाल सकते थे? छी 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 छी, आपसे अच्छा तो वह जुल्ली मियां कसाई है, जो दिन में भले ही गाय गोरु काटता है लेकिन शाम को गरीबों मजलूमों के लिए मुफ्त में हकीमी करता है। डॉक्टर ने आंखें तरेरी। छोटन बिना इसकी परवाह किए घृणा दिखाकर चल पड़ा। इस दृश्य पर तिमूर्ति मित्रों जाटो सिंह, गंगा सिंह और बच्चू सिंह के नथुने एक साथ फड़क उठे। जाटो ने बत्तीसी रगड़ते हुए कहा, ससुरे इस डोम की यह मजाल, क्या डॉक्टर बहुत मन बढ़ा दिए हो इसका? गाली सुनकर बरामदे में छोटन के पांव ठिठक गए। गंगा सिंह भी अपने भीतर का उबाल प्रकट कर बैठा। डॉक्टर, यह हमारी तौहीन है कि वह तुम्हारे मुंह लगकर बात करे। इसी वक्त उसका मुंह तोड़ देना चाहिए हमें। बच्चू सिंह भी अपना तैश प्रकट करने लगा, बोलो तो आज ही इस मर्दूत की झोपड़ी में आग लगाकर पूरे परिवार को जरा का सोहा कर दें। तुम लोग इसे नहीं जानते यार, डॉक्टर ने छोटन की ढीठता और अपनी लाचारी की समीक्षा की। यार डोमवा टिका कैसे है यहां? इसकी जो संकर नस्ल की पांच पांच खूबसूरत बेटियां हैं, इनमें से दो को तो जानते ही हो, पहले ही भाग गई। अब तीन बची हैं, मुखिया जी इन तीनों पर फिदा हैं। एक एक को इसलिए ये समझ लो कि जब तक मुखिया बना रहेगा या नक्षत्र अस्पताल की छाती पर कुंडली मारकर बैठा रहेगा। इसकी बोली मुखिया के दम पर ही निकलती है। बरामदे में खड़े छोटन के दिमाग में एक तीव्र सनसनी समा गई। मुखिया जी महज इसलिए बदनाम किए जा रहे हैं कि वे अन्य बबुआनों की तरह घृणा और भेदभाव नहीं करते थे, और छोटन की तत्पर सेवा भावना से प्रसन्न प्रभावित होकर उसके साथ उदारता से पेश आते हैं। उसका जी चाह रहा था कि इस नशंस जलील और जल्लाद डॉक्टर की गर्दन दबा दे, मगर आपे से बाहर होना ना उसका संस्कार था ना अख्तियार। उसकी हैसियत और वजूद यही था कि वह बड़ी से बड़ी फजीहत सह सकता था, बद से बदतर जलालत झेल सकता था, गंदी और सड़ी गली गाली पचा सकता था। छोटन खून का घूंट पीकर बढ़ना ही चाहता था कि जाटों की लिचलिचली हसरत ने फिर उसके पांव रोक लिए और उसके शब्द कानों में गर्म शीशे की तरह घुस गए। अरे डॉक्टर, तो हम लोग मुंह क्यों देख रहे हैं? इतनी माकूल जगह है यह अस्पताल, उसकी बीमार लड़कियों को पटाकर इलाज करो, या इस बीमारी के तो हम लोग भी डॉक्टर हैं। तनी हुई मुद्राओं का निर्धारण एकदम करवट ले बैठा। पानी तो मुंह में बहुत दिनों से आ रहा है, लेकिन यह छोटना बहुत बड़ा घाक है। फिर भी चलो एक पुरजोर कोशिश करके देखते हैं, थोड़ा रिस्क ही सही। अगले इतवार को तय रहा, विश्वास है इसकी एक ना एक लड़की को जरूर पटा लूंगा। मुर्गे और विस्की का इंतजाम तुम लोग करना। अगर उसकी कोई बेटी ना फंसी तो अपना लुक्खा सिंह है ना, मुसहरी में डेरा डालकर ताड़ी दारू का मुफ्त सदाव्रत बांटता है। या जो बेंगा वांझी है ना, जो आज मरने वाला है, इसकी जोरू को लुक्खा ने पटा रखा है। उसके जरिए दो तीन चुनी हुई मुसहरिनी आसानी से बहला फुसला कर लाई जा सकती है। छोटन का दिल दहल गया था। अस्पताल की प्रकृति जनदयालुता, कोमलता, सहानुभूति और करुणा पर व्याभिचार और बेहयाई का इतना बड़ा तांडव, अब उसमें आगे कुछ भी सुनने का धैर्य नहीं रह गया था। बेगा मांझी की छड़छड़ बिगड़ती हुई हालत का कोई निराकरण ढूंढना उसका प्राथमिक दायित्व था। यहां अब उसे रखने की कोई तुक नहीं थी। मुसहरी के तीन लोगों की मदद से उसे लेकर नवादा चल पड़ा। कल ही उसकी घरवाली सूप और खचिए आदि बेचकर 100 रुपए लाई थी। नवादा अनुमंडल के सदर अस्पताल की भी कोई भरोसेमंद साख नहीं थी। यहाँ के बहुतेरे लापरवाह कारनामे गांवों तक पहुंचते रहे थे, पर दूसरा विकल्प भी भला क्या था? छोटन ने गौर किया कि यहाँ जितने डॉक्टर थे वे अस्पताल के अपने कक्ष में बैठकर आने वाले मरीजों से बेहतर इलाज के लिए अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने की तागीद कर रहे थे। यहाँ देखने के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही थी। वार्ड की स्थिति तो गौहाल से भी बदतर थी। गंदगी और दुर्गंध के अलावा यहाँ हर चीज नदारद थी। गरीबी रेखा नहीं बल्कि गरीबी बिंदु से भी नीचे रहने वाले बेउपाव लोग अपनी बीमारी को लिए फर्श पर गेनरा, गुदड़ी या पुआल बिछाकर अपने किसी परिजन की निगरानी में बदहवास पसरे हुए थे। कौन कह सकता था कि यह अस्पताल है? इससे कई गुना बेहतर कब्रगाह या कत्लगाह होता है, जहां मृतकों के मारे जाने वाले लोगों के लिए भी इससे अच्छे इंतजाम होते हैं। बहरहाल बेंगा मांझी के लिए इसी नर्क में कहीं ना कहीं उचित इलाज की उम्मीद करनी थी, इस तरह कि 100 रुपए में ही मामला सलट जाए। मगर छोटन को क्या पता कि जोंकों की इस नगरी में 100 रुपए तो सिर्फ सूंघने में ही निकल जाएंगे। खून जांच और एक्सरे में ही 75 रुपए पार हो गए। डॉक्टर की फीस और दवा के लिए 25 रुपए कुछ भी नहीं थे। इस सरकारी अस्पताल के चप्पे चप्पे में व्याप्त बेहयाई पर छोटन हैरान था। मगर बेंगा मांझी शायद इतना बड़ा बेहया नहीं था कि दवा खरीदने के नाम पर छोटन को नंगा कर परीक्षा लेता। बेचारा पहले ही चल बसा। छोटन की आत्मा एकदम चीतकार उठी थी कि बेंगा को ना कैंसर था, ना एड्स, ना टीबी, महज दस्त और बुखार से पीड़ित था। फिर भी दो दो अस्पताल से गुजर कर भी वह इलाज नहीं पा सका। वह सिहर उठा था कि आज गरीबों के लिए इलाज किस कदर हास्यास्पद और मुश्किल हो गया है। कल इन्हें फोड़े फुंसी, सर्दी खांसी और सर दर्द से भी मरना पड़ सकता है। मानो इनके लिए हर रोग ही कैंसर और एड्स बनने जा रहा है। अस्पताल के गेट पर ही अर्थियां बिक रही थी, जैसे वे पहले ही चीख चीख कर यह बता रही हूं कि जब अस्पताल में भीतर जा ही रहे हो तो हम में से किसी एक को पसंद करते जाओ। शायद इस अस्पताल में आने वाले 60% गरीब ग्रामीणों का यही हश्र था। हर स्तर और सज धज की अर्थियां यहां उपलब्ध थी। छोटन ने बचे हुए 25 रुपए से अर्थी खरीद ली। क्या संयोग था कि वह अपने साथ 3 आदमी लेकर आया था। मानो कंधा देने की पूरी तैयारी करके आया, नहीं तो उसे भाड़े पर कुछ कंधे भी लेने पड़ते। बेंगा की घरवाली, जो इन दोनों लुक्खा सिंह द्वारा जबरन बनाई हुई रखैल थी, अब स्थायी तौर पर मुक्त हो गई। लुक्खा को उसके एवज में बेंगा का खर्च भी प्रायोजित नहीं करना पड़ेगा। रोज रोज आधा पौवा पिलाना पड़ता था। अंतिम में पता नहीं क्या मिलाकर पिला दिया कि बेंगा को इसके बाद पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उपेक्षा की निरंतरता पहले ही उसकी नियति थी। अस्पताल ने इसे चरम पर पहुंचा दिया। चलो अच्छा हुआ कि इसके मरने से ना कोई विधवा हुई ना कोई अनाथ हुआ। चारों ने अर्थी पर बेंगा का शव डाल दिया और राम नाम सत्य है कहते हुए पैदल चल पड़े। जबकि बेंगा ने जो जिंदगी जी थी उसे राम नाम सत्य नहीं सर्वथा असत्य जान पड़ता था। रास्ते में अजीब अजीब ख्याल छोटन के भीतर बनते और मिटते रहे। इन्हीं में से एक था अपने जैसे मजलूम चेहरों के लिए एक हमदर्द और रहम दिल डॉक्टर की तलाश। उसने यह भी सोचा कि क्यों नहीं वह अपने ननहका को पढ़ाकर डॉक्टर बना दे। अगर वह ऐसा कर सका तो सिर्फ अपना ही नहीं पूरे जवार का उद्धार हो सकेगा। अगले ही क्षण उसके होंठ खुद पर व्यंग से मुस्करा दिए। खाने की खर्ची नहीं और द्योड़ी पर नाच, जाति का डोम और बेटा डॉक्टर, जो भी सुनेगा हंसी से लोटपोट हो जाएगा। छोटन ने झेप कर इस विचार को झटक दिया। कंधे पर अर्थी है और वह क्या क्या अनाप शनाप सोचे जा रहा है। डॉक्टर कौतुक, उसके दोस्त, उनकी रची साजिश, बेंगा की घरवाली और लुक्खा सिंह उसे फिर याद आने लगे थे। गांव में लाश पहुंची तो किसी को कोई अचरज नहीं हुआ, कहीं कोई सुगबुगी या हलचल नहीं हुई। जैसे किसी आदमी की नहीं किसी कीड़े फतिंगे की मौत हुई, जिस पर गम, स्यापा, शोक, अफसोस करने की कोई परिपाटी नहीं। कितना अकेला था बेंगा कि आज उसकी मौत पर कोई रोने वाला नहीं। जो हल जोत रहे थे जोतते रहे, जो कुएं पर लाठा चला रहे थे वे चलाते रहे, जो खलिहान में दौनी कर रहे थे करते रहे। मतलब किसी ने अपने धंधे को स्थगित करने की भी जरूरत नहीं समझी। आदमी आदमी में कितना फर्क होता है, चाहे वह राजतंत्र हो या जनतंत्र। एक वह भी आदमी होता है जिसके मरने से सारा देश बंद करा दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार देखने के लिए पूरे मुल्क को फुर्सत बहाल करा दी जाती है। छोटन अब समझ गया था कि सामाजिक न्याय के हंगामे में एक गरीब मामूली आदमी की जान का कोई मूल्य नहीं, वह तो मात्र एक कीट पतंगा है। अभी आप सुन रहे थे जयनंदन की लिखी कहानी कीड़े फतिंगे। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।